आर्चर सेंट ऑगस्टीन की रेतीली मुख्य सड़क पर उस घर की ओर चला जो उसे श्री वेलैंड का घर बताया गया था। तभी उसने मैग्नोलिया के पेड़ तले खड़ी मे वेलैंड को देखा, बालों में धूप चमकती हुई, और सोचा कि वो इतने दिनों तक आने से क्यों कतराता रहा। यहाँ सच था, यहाँ वास्तविकता थी, यहाँ वो जीवन था जो उसका अपना था, और वो जो मनमानी बेड़ियों को तुच्छ समझने का दम भरता था सिर्फ इस डर से मेज छोड़ नहीं पाया था कि लोग समझेंगे वो छुट्टी मना रहा है। मे का पहला वाक्य था, न्यूलैंड कुछ हुआ तो नहीं, और उसे लगा कि अगर वो उसके आने की वजह उसकी आंखों से तुरंत पढ़ लेती तो ये ज्यादा स्त्रीयोचित होता। पर जब उसने कहा हाँ, लगा कि तुम्हें देखना ही होगा, तो मे के चेहरे पर फैली सुखद लाली ने सारा अचरज पिघला दिया और आर्चर समझ गया कि उसे आसानी से माफी मिल जाएगी। लेटर ब्लेयर की नरम शिकायत भी परिवार की उदार मुस्कान में जल्द घुल जाएगी। अभी सुबह ही थी और मुख्य सड़क औपचारिक अभिवादन से ज्यादा के लायक नहीं थी, जबकि आर्चर मे के साथ अकेला होकर अपना सारा प्यार और सारी अधीरता उस पर उंडेल देना चाहता था। वेलैंड परिवार के देर वाले नाश्ते में अभी घंटा भर बाकी था और भीतर बुलाने के बजाय मे ने गांव के पार पुराने संतरे के बाग तक टहलने का प्रस्ताव रखा। वो अभी अभी नदी में नाव खेकर लौटी थी और छोटी लहरों पर सुनहरा जाल बिछाती धूप मानो उसे भी अपने में लपेट चुकी थी। गर्म भूरे गाल पर बिखरे बाल चांदी के तारों से चमक रहे थे और उसकी आंखें और भी उजली चमक से लगभग पारदर्शी लग रही थीं। जब वो आर्चर के बगल में अपने लंबे डग भरती चल रही थी, उसके चेहरे पर संगम मरमर की मूर्ति जैसी शांत स्थिरता थी। आर्चर की तनी नसों को ये दृश्य नीले आकाश और अलसाई नदी जितना ही सुकून देता था। दोनों संतरे तले बेंच पर बैठे और आर्चर ने उसे खींचकर चूम लिया। धूप में ठंडे सोते का पानी पीने जैसा था, पर आलिंगन शायद उम्मीद से जोरदार था क्योंकि मे लाल होकर चौंकी सी पीछे हट गई। क्या हुआ, आर्चर ने हंसकर पूछा। मे ने हैरानी से देखा और कहा कुछ नहीं। दोनों के बीच हल्की झेप रह गई और मे का हाथ उसके हाथ से सरक गया। ब्यूफर्ट के पौधा घर वाले छोटे आलिंगन को छोड़ दे तो आर्चर ने पहली बार उसके होठों को चूमा था और उसने देखा कि वो अपनी शांत लड़कों जैसी सहजता से निकलकर विचलित हो रही है। बताओ दिन भर क्या क्या करती हो, आर्चर ने कहा। बाहें सिर के पीछे बांधे, टोप को धूप से बचने के लिए आगे खींचे, उसे सीधे साधे रोजमर्रा के विषयों पर बुलवाना अपने विचारों में डूबे रहने का सबसे आसान तरीका था और वो मी की सरल दिनचर्या सुनता रहा। तैराकी, पाल नौका, घुड़सवारी और कभी कभार पुरानी सराय का नाच। जब कोई युद्धपोत आता, फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर के कुछ हसमुख लोग सराय में पिकनिक मनाते थे और केट मेरी को ब्रोंकाइटिस हुआ था, इसलिए सेल्फ्रिज मेरी परिवार 3 हफ्तों के लिए आया हुआ था। रेत पर टेनिस का मैदान बनाने की योजना थी, पर रैकेट केवल केट और मी के पास थे और ज्यादातर लोगों ने इस खेल का नाम तक नहीं सुना था। इन सबसे वो बहुत व्यस्त थी। आर्चर की पिछले हफ्ते भेजी चर्म पत्र वाली छोटी किताब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पुर्तगाली सोनेट को बस पलट कर देख पाई थी, पर वो गेंट से एक्स तक शुभ समाचार कैसे पहुंचा कंठस्थ कर रही थी। उन पहली कविताओं में से एक जो आर्चर ने उसे पढ़कर सुनाई थी, और उसे ये बताना मजेदार लगता था कि केट मेरी ने कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम तक नहीं सुना। जल्द ही मैं ये कहकर उछल पड़ी कि नाश्ते में देर हो जाएगी, और दोनों उस जर्जर घर की ओर दौड़े जहाँ वेलैंड परिवार सर्दियां बिताता था। बेमतलब चिपका पुराना बरामदा और प्लम्बेगो व गुलाबी जिरेनियम की बेतरतीब बाड़। मे के पिता श्री वेलैंड नाजुक स्वभाव के थे, दक्षिण के होटलों की अव्यवस्था नहीं झेल पाते थे, इसलिए श्रीमती वेलैंड हर साल भारी खर्च और लगभग अपार कठिनाइयों के बीच न्यूयॉर्क से आए असंतुष्ट नौकरों और स्थानीय अश्वेत मजदूरों से काम चलाऊ गृहस्थी खड़ी करती थी। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पति को घर जैसा महसूस होना चाहिए, वरना वे इतने दुखी हो जाएंगे कि जलवायु किसी काम की नहीं रहेगी। वे हर सर्दी फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर के भले लोगों को समझाती। उधर श्री वेलैंड नाश्ते की मेज पर, जहां चमत्कार की तरह तरह के पकवान सजे थे, चमकती मुस्कान के साथ आर्चर से बोले, देखिए हम यहां डेरा डाले हैं, सचमुच डेरा।
मैं पत्नी और मे को तकलीफ झेलना सिखाना चाहता हूँ। वेलैंड दंपति आर्चर के अचानक आने से बेटी जितने ही चकित थे,
पर उसने कहा कि कड़ा जुकाम आता लग रहा था और श्री वेलैंड की नजर में ये हर कर्तव्य छोड़ने का पर्याप्त कारण था। खासकर वसंत में सावधानी जरूरी है। उन्होंने भूसे के रंग के पैनकेक अपनी थाली में ढेर करते और सुनहरा शरबत उड़ेलते हुए कहा, तुम्हारी उम्र में मैं इतना सतर्क होता तो मैं आज महफिलों में नाचती, इस वीराने में बूढ़े मरीज संग सर्दियां न काटती। पर पापा, मुझे ये जगह सच में पसंद है। आप जानते हैं, न्यूलैंड रुक पाता तो मुझे ये न्यूयॉर्क से हजार गुना अच्छी लगती। न्यूलैंड को जुकाम पूरी तरह ठीक होने तक यही रहना चाहिए, श्रीमती वेलैंड ने उदारता से कहा। युवक ने हंसकर कहा कि दफ्तर नाम की चीज भी होती है। फिर भी दफ्तर से कुछ तारों के बाद जुकाम ने उसे एक हफ्ता दिला दिया। विडंबना ये कि ये रियायत कुछ हद तक ओलेंसकी तलाक का मामला बखूबी सुलझाने से मिली थी। लेटर ब्लेयर ने श्रीमती वेलैंड को बताया था कि आर्चर ने पूरे परिवार की अमूल्य सेवा की है और बूढ़ी श्रीमती मिंगट विशेष प्रसन्न है। एक दिन जब मैं अपने पिता के साथ इलाके की इकलौती बग्घी में सैर पर निकली, श्रीमती वेलैंड ने वो विषय छेड़ा जो वे बेटी के सामने हमेशा टालती थीं। मुझे डर है कि एलेन के विचार हमारे विचारों से बिल्कुल नहीं मिलते। वो मुश्किल से 18 की थी जब मेडोरा मैनसन उसे यूरोप ले गई। याद है जब वो अपने पहले नृत्य समारोह में काली पोशाक में आई थी तो कैसा हड़कंप मचा था। मेडोरा की एक और सनक, इस बार तो लगभग भविष्यवाणी। 12 साल हो गए तब से एलेन अमेरिका नहीं आई। ताज्जुब नहीं कि वो पूरी तरह यूरोपीय है, पर यूरोपीय समाज तलाक के प्रति उदार नहीं है। काउंटेस ओलेंस्का ने शायद सोचा कि आजादी मांगना अमेरिकी विचारों के अनुरूप है। स्क्वाइटर क्लिफ से लौटने के बाद वो पहली बार उसका नाम जबान पर ला रहा था
और उसने महसूस किया कि उसके गाल पर रंग चढ़ रहा है। श्रीमती वेलैंड ने दया भरी मुस्कान दी। विदेशी हमारे बारे में ऐसी ही बेतुकी कहानियां गढ़ते हैं। वे समझते हैं कि हम दोपहर 2 बजे डिनर करते हैं और तलाक को सह लेते हैं, इसीलिए मुझे उनका सत्कार करना इतना मूर्खतापूर्ण लगता है। हमारी मेहमान नवाजी लेकर लौटते हैं और वही बकवास दोहराते हैं। आर्चर ने कोई जवाब नहीं दिया और श्रीमती वेलैंड आगे बोली, पर आपने एलेन को तलाक का इरादा छोड़ने पर राजी किया, इसके लिए हम सचमुच आभारी हैं। उसकी दादी और लवेल मामा कुछ नहीं कर पाए थे। दोनों ने लिखा कि उसका मन बदलना पूरी तरह आपके प्रभाव से हुआ। उसने खुद अपनी दादी से यही कहा, एलेन आपकी बेहद प्रशंसक है। बेचारी एलेन वो हमेशा से सनकी बच्ची थी। सोचती हूँ उसकी किस्मत का क्या होगा, वही जो हम सब ने मिलकर बना दी है। उसका मन हुआ कह दे, अगर आप सब चाहते हैं कि वो किसी भले आदमी की पत्नी बनने के बजाय ब्यूफ्रेट की रखेल बने तो आप बिल्कुल सही राह पर हैं। उसने सोचा, ये शब्द जोर से कह देता तो श्रीमती वेलैंड क्या करती। वो उस दृढ़ शांत चेहरे का अचानक ढह जाना साफ देख सकता था जिसे छोटी छोटी चीजों पर उम्र भर हुकूमत ने बनावटी रोब दे रखा था। उस चेहरे में मे की ताजा सुंदरता के निशान अब भी बाकी थे और आर्चर ने खुद से पूछा, क्या मे का चेहरा भी इसी अधेड़ अडिग मासूमियत में जमकर मोटा होना तय है।
आह नहीं, वो नहीं चाहता था कि मे के पास वैसी मासूमियत हो जो कल्पना के लिए दरवाजा और अनुभव के लिए दिल बंद कर देती है। मुझे यकीन है श्रीमती वेलैंड बोलती रही कि ये भयानक मामला अखबारों में छपता तो मेरे पति के लिए घातक होता। ब्योरे मैं नहीं जानती, जानना चाहा भी नहीं। बेचारी एलेन ने बात छेड़नी चाही तो यही कहा, बीमार की देखभाल करनी है तो मन उजला और प्रसन्न रखना ही होगा। पर मेरे पति बेहद परेशान रहे, फैसले के इंतजार में उन्हें रोज सुबह हल्का बुखार रहता। सबसे बड़ा डर यही था कि बेटी जान जाएगी कि ऐसा भी संभव है। पर जाहिर है प्यारे न्यूलैंड, आपने भी यही महसूस किया होगा। हम सब जानते थे कि आप मे के बारे में सोच रहे थे। मैं हमेशा मे के बारे में सोचता हूँ, युवक ने बात समेटने को उठते हुए कहा। वो इस एकांत का लाभ उठाकर श्रीमती वेलैंड को शादी आगे बढ़ाने के लिए मनाना चाहता था, पर कोई तर्क नहीं सूझा जो उन्हें हिला सके और श्री वेलैंड और मे की बग्घी लौटते देख उसे राहत मिली।
उसकी इकलौती उम्मीद थी कि मे से एक बार फिर अकेले में बात हो। रवानगी से एक दिन पहले वो उसके साथ पुराने स्पेनी मिशन के उजड़े बाग में टहलने गया। वो पृष्ठभूमि सहज ही यूरोपीय दृश्यों की याद दिलाती थी और चौड़े किनारे वाले टोप,
जो उसकी निर्मल आंखों पर रहस्यमय छाया डालता था। मैं पहले से भी अधिक मोहक लग रही थी। उसने ग्रेनाडा और अल्हम्ब्रा की बातें छेड़ी तो मैं खिल उठी। हम इस वसंत में वो सब देख सकते हैं, सेविल का ईस्टर भी, आर्चर ने कहा, बड़ी रियायत पाने की उम्मीद में जानबूझकर मांग बढ़ा चढ़ा कर। सेविल का ईस्टर? अगले हफ्ते तो लेंट शुरू है, वो हंसी। तो लेंट में ही शादी कर ले तो, उसने पलट कर कहा, पर मैं इतनी स्तब्ध दिखी कि उसे अपनी भूल समझ में आ गई। जाहिर है मेरा वो मतलब नहीं था मेरी जान, पर ईस्टर के फौरन बाद तो शादी हो ही सकती है। अप्रैल के अंत में जहाज पकड़ लेंगे, दफ्तर में मैं सब संभाल लूंगा। मैं उस संभावना पर सपने देखती सी हल्की मुस्कान मुस्कराई, पर आर्चर ने भांप लिया कि सपना देखना ही उसके लिए काफी है। ये वैसा ही था जैसे वो उसे सुंदर कविताएं पढ़कर सुनाए, उन चीजों की कहानियां जो असल जिंदगी में कभी नहीं होती। ओह न्यूलैंड, सुनाते रहो, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर ये महज कहानी क्यों रहे, हम इन्हें सच क्यों न कर ले। सच तो होगा ही प्रिया, अगले साल, उसकी आवाज उन शब्दों पर ठहर गई जैसे उनका स्वाद ले रही हो। तुम नहीं चाहती कि ये जल्दी सच हो, मैं तुम्हें अभी से शुरुआत के लिए नहीं मना सकता।
उसने सिर झुका लिया और टोप के किनारे तले आर्चर की नजरों से ओझल हो गई। एक और साल यों ही सपने में क्यों बीते, मेरी ओर देखो मेरी जान, समझती नहीं मैं तुम्हें पत्नी रूप में कितनी शिद्दत से चाहता हूँ। एक पल वो निश्चल रही, फिर उसने इतनी बेबस निर्मलता भरी आंखों से उसे देखा कि आर्चर ने उसकी कमर में डाली बांह आधी ढीली कर दी। पर अचानक उसकी दृष्टि बदली और गहरी अबूझ हो गई। पता नहीं मैं ठीक समझी या नहीं, उसने कहा, कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें भरोसा नहीं कि मुझसे प्यार करते रहोगे। आर्चर बेंच से उछलकर खड़ा हो गया। हे भगवान, शायद मैं नहीं जानता, वो झुंझलाकर फूट पड़ा। मैं वेलेंड भी उठ खड़ी हुई। आमने सामने खड़े होते ही वो गरिमा और नारीत्व में मानो और ऊंची हो गई। दोनों पल भर चुप रहे, जैसे अपनी बातों के अनचाहे मोड़ से घबरा गए हों। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, अगर ऐसा है तो क्या कोई और है, कोई और तुम्हारे और मेरे बीच? उसने शब्द धीरे धीरे दोहराए, मानो सवाल अभी पूरा समझ न आया हो और उसे खुद से दोहराने के लिए समय चाहिए हो। मैं ने उसकी आवाज की अनिश्चितता भांप ली और गहरे होते स्वर में आगे कहा, खुलकर बात करें न्यूलैंड, मैंने कभी कभी तुम में बदलाव महसूस किया है,
खासकर हमारी सगाई की घोषणा के बाद। क्या बेतुकी बात कह रही हो, आर्चर संभल कर चिल्लाया। मैं ने उसका विरोध फीकी मुस्कान से स्वीकारा। तो फिर इस पर बात करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पल भर रुकी, फिर सिर उठाते हुए सुघड़ भंगिमा से जोड़ा, या ये सच ही हो तो भी हम इस पर बात क्यों ना करें, हो सकता है तुमसे भूल हुई हो। आर्चर ने सिर झुका लिया और धूप भरी पगडंडी पर पत्तियों के काले नक्श को देखने लगा। भूल करना हमेशा आसान है, पर अगर मैंने वैसी भूल की होती जैसी तुम कहती हो तो शादी जल्दी करने की मिन्नतें क्यों करता। मैं ने भी नीचे देखा, छतरी की नोक से पत्तियों का नक्श कुरेदती, शब्द तलाशती। हाँ, उसने आखिर कहा, शायद तुम मामले को एक ही बार में निपटा देना चाहते हो, ये भी एक तरीका है। उसकी शांत स्पष्टता से आर्चर चौंका, पर उसने उसे भाव शून्य नहीं समझा। टोप के किनारे तले उसकी पार्श्वरेखा पीली थी और संकल्प से भिंचे होठों के ऊपर नथुना हल्का कांप रहा था। तो फिर आर्चर बेंच पर बैठ गया, उसे देखता हुआ माथे पर ऐसी सिकुड़न लिए जो मजाकिया दिखना चाहती थी। मैं फिर बैठ गई और बोली, ये मत समझो कि लड़की उतना ही कम जानती है जितना माँ बाप सोचते हैं। इंसान सुनता है, गौर करता है, अपनी भावनाएं, अपने विचार रखता है, और जाहिर है तुमने मुझसे अपने प्रेम की बात कहने से बहुत पहले, मैं जानती थी कि कोई और है जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी है। 2 साल पहले न्यूपोर्ट में सब यही बातें करते थे, और एक बार नाच में मैंने तुम दोनों को बरामदे में साथ बैठे देखा। वो भीतर लौटी तो उसका चेहरा उदास था और मुझे दुख हुआ। हमारी सगाई हुई तो मुझे वो याद आया।
उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट तक उतर आई थी और हाथ छतरी की मूठ को पकड़ते छोड़ते लगातार कसमसा रहे थे। युवक ने सावधानी से अपना हाथ उसके हाथों पर रखा। उसके सीने में अकथनीय राहत फैल गई थी। मेरी प्यारी, बस इतनी सी बात थी, काश तुम सच जानतीं। मैं ने झट सिर उठाया, तो कोई सच है जो मैं नहीं जानती? उसने हाथ उनके हाथों पर ही रहने दिया।
मेरा मतलब था उस पुरानी कहानी का सच जिसकी तुम बात कर रही हो, वही सच तो मैं जानना चाहती हूँ न्यूलैंड। मुझे जानना ही चाहिए, किसी और के साथ अन्याय करके मैं अपना सुख नहीं बना सकती, और मैं मानना चाहती हूँ कि तुम भी यही सोचते हो। ऐसी नींव पर हम कैसा जीवन खड़ा करेंगे? उसके चेहरे पर ऐसा करुण साहस था कि आर्चर उसके पैरों में गिर पड़ने को हो आया। बहुत दिनों से ये कहना चाहती थी, वो बोलती रही, मैं समझती हूँ कि जब दो लोग सच में प्रेम करते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जब जनमत के विरुद्ध जाना ही उचित हो, और अगर तुम किसी भी तरह बंधे हो उस व्यक्ति से जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उसके प्रति तुम्हारा कोई भी उत्तरदायित्व है और तुम अपना वचन निभा सकते हो, चाहे उसके तलाक के बाद उससे विवाह करके ही, तो न्यूलैंड मेरी खातिर उसे मत छोड़ो।
ये समझते ही कि मे के भय श्रीमती थॉर्ली रशवर्त के साथ उसके पुराने प्रसंग पर टिके हैं, आर्चर का अचंभा उसकी दृष्टि की उदारता के आगे विस्मय भरी श्रद्धा में बदल गया। इतनी साहसिक लीक से हटी सोच में कुछ लगभग अलौकिक था, और दूसरी चिंताएं उसे दबा न रही होती तो वो इसी अचरज में खोया रहता कि वेलैंड की बेटी उसे उसकी पूर्व प्रेमिका से विवाह करने के लिए कह रही है। पर जिस खाई के किनारे से वे गुजरे थे उसकी झलक से उसका सिर अब भी चकरा रहा था, और लड़की के मन के रहस्य के प्रति नई श्रद्धा उसे भर रही थी। कुछ देर वो कुछ बोल न सका, फिर कहा, जैसा तुम सोचती हो वैसा कोई वचन या दायित्व नहीं है। ऐसे मामले हमेशा इतने सीधे रूप में सामने नहीं आते, पर वो मायने नहीं रखता। मैं तुम्हारी उदारता को प्यार करता हूँ, क्योंकि इन चीजों पर मैं भी तुम्हारी ही तरह सोचता हूँ। हर मामला अपने आप में अपने ही मूल्य के आधार पर परखा जाना चाहिए, मूर्खतापूर्ण रूढ़ियों की परवाह किए बिना। मेरा मतलब, हर स्त्री को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। अपने विचारों की दिशा भाप कर वो चौंक कर रुका, फिर उसे देख कर मुस्कराते हुए बोला,
जब तुम इतना कुछ समझती हो प्यारी, तो एक बात और नहीं समझ सकती। दिखता नहीं कि एक और मूर्खतापूर्ण रूढ़ी के आगे झुकना कितना निरर्थक है? अगर हमारे बीच कोई नहीं, कुछ नहीं, तो क्या ये जल्दी शादी करने की एक और वजह नहीं, बजाय इंतजार के? वो खुशी से लाल हो उठी और उसने चेहरा ऊपर उठाया। झुकते हुए आर्चर ने देखा कि उसकी आंखें सुख के आंसुओं से चमक रही हैं, पर अगले ही पल वो मानो नारीत्व की ऊंचाई से उतरकर फिर लड़की की कोमलता और डर में समा गई, और आर्चर समझ गया कि उसका साहस, उसकी पहल हमेशा दूसरों के लिए है, अपने लिए कभी नहीं। साफ था कि बोलने में उसे अपने संयत रूप से कहीं ज्यादा मेहनत लगी थी, और आर्चर के पहले ही दिलासे पर वो अपने पुराने रूप में लौट गई, जैसे जरूरत से ज्यादा साहसी हो चला बच्चा माँ की गोद में भाग आए। आर्चर का उसे और मनाने का मन नहीं हुआ। पारदर्शी आंखों से उसे गहराई तक देखने वाले उस नए अस्तित्व के लोप ने उसे बहुत निराश कर दिया था। मे को उसकी निराशा का आभास हुआ सा लगा, पर वो नहीं जानती थी कि उसे कैसे बहलाए, और वे उठे और चुपचाप घर की ओर चल दिए।